मंच पर आसीन स्वदेशी जागरण मंच के सभी सम्माननीय नेतागण, इस विभाग से आए हुए शिव प्रेमी नागरिक बंधुगण भगिनीगण, देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधि बंधुगण भगिनीगण और पत्रकार बंधु, स्वदेशी जागरण मंच के इस सम्मेलन का उद्घाटन यह एक शुभारंभ हुआ। परम पूजनीय स्वामी जी ने इस आंदोलन को आशीर्वाद दिया और इसके कारण जो काम आशीर्वाद से शुरू होता है वह सफल होता है, इस नाते यह काम सफल होगा यह हमें पूरी उम्मीद है। कल उद्घाटन भाषण के पश्चात कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आपके भाषणों से ऐसा लगता है कि स्वदेशी जागरण मंच अमेरिकन जनता के खिलाफ है, यूरोपियन जनता के खिलाफ है। हमने कहा भाई ये बिल्कुल गलत बात है कि स्वदेशी जागरण मंच अमेरिकन जनता के खिलाफ है, यूरोपियन जनता के खिलाफ है। हमने कहा भाई ये बिल्कुल गलत बात है, अमेरिकन और जनता के खिलाफ हम नहीं है। तो यूरोपियन और अमेरिकन जनता को अंधेरे में रखकर वही के कुछ स्वार्थी तत्व जो बाकी दुनिया का शोषण कर रहे उन तत्वों के खिलाफ हम हैं। अमेरिकन और यूरोपियन सरकारें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जागतिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब लोगों का एक षड्यंत्र है विकसित गोरे देशों के हित के लिए बाकी गरीब देशों का शोषण करना, यह एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का पता शुरू शुरू में यूरोप और अमेरिका के जनता को नहीं था, इसलिए वह सावधान नहीं थे। जैसे जैसे इसका पता चलने लगा तो यूरोप और अमेरिका के गोरे देशों के जनता के लोग भी सावधान होने लगे, इस शोषण का विरोध करने लगे। उन्होंने एक मंच बनाया जिसका नाम था द अदर इकोनॉमिक समिट, और जहां विश्व व्यापार संगठन में गरीब देशों का शोषण करने के लिए क्या क्या किया जाए इसका विचार करने के लिए विकसित गोरे देश G7 G8 इनकी मीटिंग होती थी, उसी जगह दूसरे दिन से द अदर इकोनॉमिक समिट की मीटिंग होती थी जिसमें यूरोप अमेरिका के बुद्धिमान लोग जो मानवतावादी है वो एकत्रित आते थे और वहाँ प्रस्ताव पारित करते थे, इनके प्रस्ताव काटने वाले, शोषण के प्रस्ताव काटने वाले प्रस्ताव उसी समय वही करते थे। धीरे धीरे यह जानकारी बढ़ते गई और आज मैं ये कह सकता हूँ कि खास अमेरिका में जब सर्वेक्षण किया गया, ऐसा मत समझे कि भारतीय जनता इनके पीछे है शोषकों के, नहीं, अमेरिकन जनता भी शोषकों के पीछे है ऐसा नहीं, लेकिन अमेरिका के जनता के 61% लोगों ने इन शोषकों के खिलाफ WTO के खिलाफ मतदान किया और बताया कि हम इनके दुष्ट प्रवृत्ति से सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, कल हमने बताया कि हमारे राजनेता अमेरिका के प्रभाव में है, वही दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश मानते हैं, लेकिन वहीं के विद्वान लोगों ने, उनका जो रिसर्च सेंटर था उसने रिसर्च करके यह बताया कि अमेरिका नीचे जा रहा है और केवल अपना मरण आज न होते हुए 20-25 साल बाद में हो, इसीलिए अन्य देशों का शोषण वो कर रहे, बाकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और अर्थव्यवस्था थोड़े ही समय में नीचे जाएगी, यह भविष्य वहीं के बुद्धिमान लोगों ने किया। और साइंस ऑफ मैनेजमेंट के विश्व के सबसे प्रधान पीटर ड्रकर, इन्होंने 20 साल पहले यह भविष्यवाणी की थी कि 2015 से लेकर 2020 साल तक अमेरिका निम्नतर स्तर पर अर्थव्यवस्था के दृष्टि से आ जाएगा। तो हमारे राजनेताओं के मन में यह जो भ्रांति है वह भ्रांति दूर हो जाए, और आज जो उस भ्रांति के कारण अमेरिका के दबाव में काम होता है वह न हो, यह देखना अपना काम है। कल लोगों ने यह भी कहा कि विश्व व्यापार संगठन में क्या होता है क्या नहीं, मामूली जानकारी हम रखते हैं। कल भी भाषणों में वह जानकारी दी गई। शुरू से पार्लियामेंट के अंधेरे, पार्लियामेंट को अंधेरे में रखकर भारत सरकार ने किस तरह विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया, उसके बाद लगातार हमारे प्रतिनिधियों को आदेश दिया कि अमेरिका और यूरोप का जैसा आदेश होगा वैसा ही मतदान करो, लेकिन भारत में धीरे धीरे जनमत का दबाव बढ़ते गया। स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, बाकी भी देशभक्त संस्थाएं, इनके निदर्शन हुए, और इस दबाव के फलस्वरूप फिर भारत सरकार को मजबूरी से यह मानना पड़ा कि आप लोगों की जो भूमिका है वही भूमिका कैनकन के कॉन्फ्रेंस में रखी जाएगी, वैसी रखी गई, और वहां का सारा रिपोर्ट आपके पास समाचार पत्रों से आया है। किंतु कल और भी कुछ प्रश्न उपस्थित हुए। उन्होंने कहा भाई वो विश्व व्यापार क्या है, यह है वो है, हमारे सर के ऊपर जाने वाले सवाल है। पहले आप हमको ये समझाओ कि स्वदेशी क्या है। अब स्वदेशी की अवधारणा माने देशभक्ति का आविष्कार है, किंतु इतना बोलने से प्रकट नहीं होता। राष्ट्रीय जीवन, व्यक्तिगत जीवन के सभी कार्यों में स्वदेशी का दर्शन होना चाहिए, होता रहता है। स्वदेशी क्या है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। इंग्लैंड में फिर तो उन्होंने छाने से पहली बार 1867 में पहली बार उन्होंने रसगुल्ला बनाया, और रसगुल्ला सर्वमान्य हो गया। उसके बाद फिर बाकी जो रसगुल्ला के बाकी चीजें हैं वो बनने लगी। इसका नाम स्वदेशी है। हर चीज में स्वदेशी है, खाने में स्वदेशी, बोलने में स्वदेशी, व्यवहार में स्वदेशी। मेरे गांव में, छोटा गांव है मेरा, स्वातंत्र्य वीर सावरकर आए थे, डॉक्टर आप्टे जी के यहाँ उनका उतरने का इंतजाम था। जैसे वो ऊपर चढ़ गए सीढ़ी, पांव धोने के लिए पानी दिया उनकी पत्नी ने, तो डॉक्टर आप्टे ने कहा कि सावरकर जी ये मेरी वाइफ है। सावरकर जी ने हंसकर कहा तुम्हारी मराठी भाषा में वाइफ के लिए कोई शब्द नहीं क्या? तो ये लज्जित हो गए, उन्होंने कहा पत्नी शब्द है। अब ये स्वदेशी का स्पिरिट है, हर बात में स्पिरिट है। अब आप देखिए इस्लाम की बात हम करते हैं। मुस्तफा गाजी केमाल पाशा जिस समय तुर्कस्तान के प्रधान हो गए, उस समय उन्होंने कहा कि अब तुर्कस्तान का स्वदेशीकरण होना चाहिए, यहां तक कि इस्लाम का भी स्वदेशीकरण होना चाहिए। उनका मार्गदर्शक गोवाक आल्प इस नाम का विद्वान था, उन्होंने कहा कि अरेबी भाषा के प्रभाव से जो जो शब्द हमारे टर्किश भाषा में आए हैं उनको सबको पहले निकाला जाए, भाषा शुद्धि की जाए। और उसके बाद उसने कहा कि हम इस्लाम के हैं ठीक है, कुरान को मानते हैं ठीक है, मस्जिद में जाते हैं यह ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते ये ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि इसके कारण अरेबिक संस्कृति का प्रभाव हमारे टर्किश संस्कृति पर हम होने दें, हमें टर्किश संस्कृति पर अरबी संस्कृति का प्रभाव न हो। तो कुरान जो था यह अरबी भाषा में लिखा हुआ था, उन्होंने कुरान का टर्किश भाषा में भाषांतर करवाया और एक शुक्रवार को तुर्कस्तान के सभी मस्जिदों में टर्किश कुरान पढ़ा गया। तो उस समय पुराने मतवादी लोग, नव मतवादी लोग, इनके संघर्ष हुए, इस्तांबुल के रास्ते पर खून बहने लगा, किंतु उन्होंने हिम्मत के साथ स्वदेशीकरण किया, कुरान का भी स्वदेशीकरण किया। हमारे यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी जो आते हैं बहुत घृणास्पद काम करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, अमेरिका के एजेंट के नाते काम करते हैं, हम उनका निषेध करते हैं, सब ठीक है, लेकिन कुछ एक दो संप्रदाय ऐसे कि जो क्रिश्चियनिटी के भी स्वदेशीकरण का विचार कर रहे हैं। जैसे बाइबल है इंग्लिश में न पढ़ते हुए वहाँ के स्थानिक भाषा में पढ़ना, हर चीज के सामने जो आमीन आता है आमीन के जगह ओम कहना, जो बिशप रहते हैं धर्मगुरु उन्होंने भगवे कपड़े पहना, ऐसे धीरे धीरे उनका भी स्वदेशीकरण ये हो रहा है। ऐसे स्थिति में स्वदेशी का महत्व सबने समझने की आवश्यकता है। पिछले 12 दिसंबर को स्वदेशी जागरण मंच की ओर से पूरे देश में स्वदेशी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? तो उस दिन बंबई के कपड़ा मिल के सामने जो विदेशी कपड़ा लेकर लॉरी आ रही थी, उसके सामने बाबू गेनू इस नाम का एक मामूली हमाल वो लेट गया और उसने कहा कि मैं ये लॉरी नहीं जाने दूंगा। ब्रिटिश सोल्जर उन्मत्त थे, उन्होंने ड्राइवर को कहा लॉरी इसके ऊपर चलाओ, लॉरी चलाई गई, उसकी मृत्यु हुई। यह जो उसका आत्म बलिदान था उसके स्मृति में हर साल 12 दिसंबर को हम स्वदेशी दिवस मनाते हैं। इससे स्वदेशी का कितना महत्व होगा यह आपने समझना चाहिए। स्वदेशी पर आपत्ति उठाने वाले हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे आंग्ल विद्या प्रभावित कई लोग हैं, वो हिंदुस्तान के बारे में कम जानते हैं, इंग्लैंड के बारे में ज्यादा जानते हैं। स्वदेशी जागरण मंच का जब निर्माण होने जा रहा था वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा ठेंगड़ी जी आप स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण ही मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या है? बोले सब जानते हैं कि आप और हम एक बिरादरी के हैं, और फिर आप ये भी कहेंगे कि स्वदेशी वस्तु का ही इस्तेमाल होना चाहिए तो लोग हमको भी गाली देंगे। हमने कभी गाली क्यों देंगे? मेरे आपको पता नहीं, हमारे न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, उनको हम कहे कि कोलगेट नहीं वज्रदंती का प्रयोग करो हंसेंगे, हमें कहेंगे आप दकियानुसी है ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट है। हमने कहा ऐसा करो, आपको ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट दकियानुसी कहने वाले ये कौन कौन है जरा हमको नाम बताओ। बोले क्यों? हमने कहा इसका कारण है, ये लोग मोतीलाल जी नेहरू से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे क्या? मोतीलाल नेहरू जी के बारे में ऐसा प्रवाद था कि उनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, इतने फैशनेबल थे, किंतु महात्मा जी ने उनके बदन पर खादी का कपड़ा पहनाया। तो महात्मा जी के कहने पर मोतीलाल जी ने खादी पहनना शुरू किया। मोतीलाल जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आपके यहाँ कौन है? चुपचाप रहे। हमने कहा यह सोफिस्टिकेटेड सवाल नहीं है, प्रमुख बात है कि गांधी जी ने जब कहा तो गांधी जी को कन्विक्शन थी कि यही रास्ता है, आपके मन में कन्विक्शन नहीं है। और दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि जिसको आप कहेंगे वो आपकी बात मानेंगे इसका भरोसा नहीं, इसके कारण आप बोल नहीं सकते। और एक चर्चा है, बोले आप बहिष्कार शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हो? उनका बहिष्कार शब्द क्या है? बड़ा अनडिग्निफाइड है। कहा अच्छा, आपके यहाँ के कितने लोग डिग्निफाइड है जरा मुझे सूची दीजिए। बोले क्यों? हमने कहा कि ऐसा है कि 1906 के कलकत्ता कांग्रेस में अध्यक्षीय भाषण देते समय दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षण, स्वदेशी और बहिष्कार इस चतुस्सूत्र का उच्चारण किया, और वो उच्चारण कर सकते हैं बहिष्कार का। आपके यहाँ कौन से डिग्निफाइड लोग हैं जो बिलो डिग्निटी समझते हैं? मतलब ये है कि हमारे राजनेता और खासकर आंग्ल विद्या प्रभावित लोग इतने मानसिक दासता आपको पहुंच गए हैं कि जो वो पश्चिम के लोग करेंगे वही ठीक है, हम जो करेंगे वह ठीक नहीं है, इस नतीजे पर पहुंच गए हैं। इस मानसिक दासता से लोगों को मुक्त करना होगा। स्वदेशी का जन जागरण सारे देहातों में करना होगा। इस सम्मेलन में कार्यक्रम तय हो गए। कैंपेन के पश्चात जब दिखाई दिया कि पहले जैसे विकसनशील देश ये दबते थे, गोरे देशों ने दबाया तो दबते थे, आज वो स्थिति नहीं रही, ये सबको पता चला है। नई परिस्थिति में क्या करना, इसकी नई रणनीति, नई स्ट्रैटेजी वो बना रहे, इसका मुकाबला कैसे करना, इसका विचार इस सम्मेलन में होगा, इसके बाद भी होगा। और उस समय जो जो कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आएगा, उस कार्यक्रम को आप पूरी ताकत के साथ समर्थन दीजिए, तब तो हम देश को बचा सकेंगे, वरना देश फिर से गुलामी में जाएगा, आर्थिक गुलामी में जाएगा। यही इशारा देते हुए, यही चेतावनी देते हुए मैं मेरा भाषण पूरा करता हूँ।